मैं अमित कुमार, बीए तृतीय वर्ष, ज्योग्राफी ऑनर्स, आप लोगों के लिए हिंद महासागर एवं परिमंडलीय राष्ट्र एक भौगोलिक अध्ययन, डॉक्टर तारा देवी सिंह द्वारा लिखित पुस्तक की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं। अध्याय एक, हिंद महासागर एवं परिमंडलीय राष्ट्र, सीमांकन, विशेषताएं एवं महत्व, जिसका उपशीर्षक है महासागर। क्लेरे द फ्लोरियो 1798 से 1800 के समय से ही पृथ्वी के 71% जल का विभिन्न महासागरों में विभाजन समुद्र वैज्ञानिकों के मत में एक विवादास्पद प्रश्न रहा है। वस्तुतः एक लंबे अंतराल तक लंदन के रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की 1845 की संस्तुति, जो कि 1893 में ही छपी, के आधार पर इसके पांच भागों अटलांटिक, प्रशांत, हिंद, आर्कटिक एवं अंटार्कटिक में विभाजन को मान्यता प्राप्त रही। प्रथम तीन सागरों एवं अंटार्कटिक के मध्य कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं थी एवं भिन्न भिन्न स्थानों पर इसे 67.5 डिग्री दक्षिण, 60 डिग्री दक्षिण तथा 55 डिग्री दक्षिण के संदर्भ में नियत किया गया। इसे एक विशेष प्रादेशिक इकाई के रूप में दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ तक आर्कटिक महासागर का प्रश्न है, यूरोप एवं ग्रीनलैंड के मध्य की विस्तृत दूरी के लिए आर्कटिक वृत्त 67.5 डिग्री उत्तर को सीमा माना गया। क्रमेल 1879 के महत्वपूर्ण प्रपत्र तथा पुस्तक हैंडबच डेर ओशनोग्राफिक 1897 के प्रकाशन के बाद सामान्यतया भूतल के संपूर्ण जल का तीन महासागरों अटलांटिक, प्रशांत एवं हिंद में विभाजन किया जाने लगा। तदनुसार इनका विस्तार दक्षिण की अविहित और कल्पित सीमाओं के मध्य अंटार्कटिक महाद्वीप तक माना गया एवं इसी प्रकार यूरोप, एशिया, अमेरिका तथा बेरिंग जलडबरू मध्य के उत्तर स्थित संपूर्ण जल अटलांटिक महासागर में सम्मिलित कर लिया गया। पिछले कुछ वर्षों में उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित जल को पुनः पृथक कर विशेषताओं के आधार पर चार प्रमुख महासागरों अटलांटिक, प्रशांत, हिंद एवं आर्कटिक में विभाजित किया गया। सीमांकन की जटिलता के निवारण हेतु 1919 में लंदन में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो की स्थापना कर इसे राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालयों की सहायता से महासागरों एवं सागरों की परिमिति निर्धारण का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसके 1953 में छपे द्वितीय संस्करण विशेष प्रकाशन संख्या 23 में इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो द्वारा निर्धारित महासागरों एवं सागरों की परिमिति लिमिट्स ऑफ ओशन एंड सीज में चारों महासागरों का अटलांटिक, प्रशांत, हिंद एवं आर्कटिक के रूप में नामकरण तो किया गया, परंतु इनमें सागर स्थित जल को सम्मिलित न कर शेष जल की संज्ञा दी गई। अटलांटिक एवं प्रशांत महासागरों को विषुवत रेखा से उत्तर एवं दक्षिण दो दो भागों में विभाजित किया गया। दूसरी तरफ अंटार्कटिक महासागर की मौसमी परिवर्तन की प्रकृति के कारण अंटार्कटिक जल की उत्तरी सीमा का निर्धारण समस्यापरक हो गया तथा अटलांटिक, हिंद एवं प्रशांत महासागरों की सीमा अफ्रीका, अमेरिका, तस्मानिया के सुदूर दक्षिण बिंदुओं से गुजरने वाले देशांतरों के परिप्रेक्ष्य में अंटार्कटिक महाद्वीप तक विस्तृत मान ली गई। हिंद महासागर हिंद महासागर आकार की दृष्टि से भूतल के तीनों बड़े महासागरों प्रशांत, अटलांटिक एवं हिंद में सबसे छोटा है। प्रथम दो हिम में से हिम तक विस्तृत है, जबकि हिंद महासागर का उत्तरी 3/4 भाग स्थल से आबद्ध है। इसके अंतर्गत विश्व का 20% जल निहित है तथा यह अफ्रीका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से घिरा हुआ एक विशाल खाड़ी सा प्रतीत होता है। इसके मस्तक पर हिंद देश, जिसके नाम पर महासागर का नाम पड़ा है, छत की तरह विराजमान है। हिंद महासागर की दक्षिणी एवं ध्रुवीय हिंद महासागर की दक्षिणी एवं उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण एक विवादास्पद विषय रहा है। कुछ विद्वानों ने इसकी दक्षिणी सीमा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसके दक्षिण गरजता 40 रोरिंग 40 बहता है, माना है। उसके दक्षिण स्थित अंटार्कटिका तक के विस्तृत महासागर को दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। ब्रुंस 1958 ने इसकी उत्तरी सीमा एशिया के दक्षिणी तट द्वारा पश्चिमी अफ्रीका के पूर्वी तट एवं केप ऑफ गुड होप के देशांतर द्वारा एवं दक्षिणी सीमा अंटार्कटिक महाद्वीप द्वारा निर्धारित किया है। उन्होंने पूर्वी सीमा मलक्का जलडमरू के मध्य के उत्तरी भाग से पूर्वी द्वीप समूह के पश्चिमी एवं दक्षिणी तट होते हुए न्यू गिनी के स्थित दक्षिण स्थित टॉर्स जलडमरू मध्य से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तथा बॉस जलडमरू मध्य के पश्चिम तस्मानिया होते हुए 147 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे निश्चित किया है। 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित इसकी पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी सीमाएं भिन्न रूप में अंकित की गई हैं। हिंद महासागर को अटलांटिक से अलग करने के लिए अगुलहास अंतरीप के देशांतर 20 डिग्री पूर्व, प्रशांत से अलग करने के लिए तस्मानिया के दक्षिण पूर्वी अंतरीप के देशांतर 147 डिग्री पूर्व तथा बास जलडमरू मध्य के पश्चिमी भाग और उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया तथा मलाया प्रायद्वीप का मध्य तिमोर, सुम्बा, फ्लोर्स व मुंडा होते हुए सुमात्रा तक नियत किया गया है। इसकी अंटार्कटिका से अलग करने वाली दक्षिणी सीमा 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश बताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो के विशेष प्रकाशन 23/1953 में प्रस्तावित हिंद महासागर का परिसीमन इन सबसे भिन्न परंतु सर्वाधिक उचित लगता है। उसके अनुसार हिंद महासागर की उत्तरी सीमा एशिया महाद्वीप के दक्षिणी तट द्वारा तथा दक्षिणी सीमा अगुलहास अंतरीप के देशांतर 20 डिग्री पूर्व से अंटार्कटिका तक क्वीन माइनलैंड, पूर्वी सीमा प्रिंसेस रैनहिल्ड तट से पश्चिम में प्रिंसेस एस्ट्रीड तट तक निर्धारित की गई है। उत्तरी पूर्वी सीमा छोटे सुंडा द्वीपों से प्रारंभ होकर एक द्वीप से दूसरे द्वीप होते हुए जावा, सुमात्रा से सिंगापुर तक निश्चित की गई है। यह मलक्का जलडमरू मध्य में सिंगापुर से सुमात्रा तक की पूर्व पश्चिम रेखा द्वारा सिंगापुर से पूर्व पश्चिम खींची गई रेखा द्वारा या पेड्रो पॉइंट से उत्तर पश्चिम तक, तत्पश्चात सुमात्रा, जावा, रोटी, तिमोर को मिलाती हुई रेखा द्वारा परिभाषित होती है। पूर्वी सीमा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर का अंकन अत्यंत विवादास्पद विषय रहा है। तिमोर सागर, अराफुरा सागर तथा कारपेंट्रिया की खाड़ी प्रशांत महासागर में रखा जाए या हिंद महासागर के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए, यह सुनिश्चित नहीं हो सका। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो इन्हें इंडोनेशियाई द्वीप समूह के साथ अर्थात प्रशांत महासागर के सीमा क्षेत्र से जोड़ता है। उक्त ब्यूरो के वालो एवं कोसिडना ने पश्चिमी तिमोर सागर को हिंद महासागर में तथा अराफुरा को प्रशांत में रखते हुए भिन्न भिन्न रेखाएं खींचा है। इसमें टार्स जलडमरू मध्य को पश्चिमी सीमा मानते हुए ऑस्ट्रेलिया को यार्क अंतरीप 5 डिग्री दक्षिण 142 डिग्री 3 सेकेंड पूर्व से अराफुरा सागर के पूर्वी तट से होते हुए न्यू गिनी के बेंसबैक नदी 141 डिग्री 1 मिनट पूर्व तक हिंद महासागर की पूर्वी सीमा मानी गई है। ऑस्ट्रेलिया के मत्स्य विभाग ने भी इसी आधार को अपनाया है। कुछ अन्य विद्वानों ने अराफुरा के साथ साथ तिमोर सागर को भी प्रशांत के अंतर्गत रखने की संस्तुति की है, जबकि संरचनात्मक दृष्टि से तिमोर सागर पूर्णतया हिंद महासागर का जलीय विस्तार है। कई भूगर्भ शास्त्रियों ने टार्स जलडमरू मध्य के सबसे संकरे छोटे मार्ग से होते हुए न्यू गिनी ब्लॉक पॉइंट से आरू एवं तिमोर तक हिंद महासागर की सीमा खींचा है। इस प्रकार अराफुरा का इसमें सम्मिलित करने का सुझाव दिया है। सामान्यतया भूगर्भ शास्त्रियों ने भी इसी परिभाषा को अपनाया है। इस संदर्भ में स्कॉट 1935 ने हिंद एवं प्रशांत महासागरों के भूगोल पर अपने प्रसिद्ध कार्य में पूर्वी सीमा ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण 8वें अंतरीप से किंग द्वीप तक तथा बास जलडमरू मध्य की पश्चिमी सीमा से उत्तरी पश्चिमी तस्मानिया के ग्रीम अंतरीप तक माना है। बहुत से अधिकारीगण क्रमेल एवं कोसिन्ना द्वारा नियत की गई बास जलडमरू मध्य की पश्चिमी सीमा ही स्वीकार करते हैं, जबकि स्कॉट ने इसकी पूर्वी सीमा तक का क्षेत्र हिंद महासागर के अंतर्गत माना है। मर्चिसन कमेटी ने तस्मानिया से दक्षिण हिंद महासागर की सीमा 147 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे अंटार्कटिक महाद्वीप पर स्थित फीसर खाड़ी के जॉर्ज फाइव तट तक नियत किया है। स्कॉट तथा कई अन्य वैज्ञानिकों ने मिल राइज से मैक्री द्वीप एवं बेलेनी द्वीपों से अदारे अंतरीप तक की अंतः समुद्री श्रेणी का की सीमा माना है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो ने 1928 में हिंद महासागर की दक्षिणी सीमा दक्षिण अफ्रीका के केप अगुलहास से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के केप लिविन तक खींची गई रेखा को माना था। इसके पश्चात दक्षिणी महासागर की स्थिति अंटार्कटिका तक स्वीकार की गई थी। बाद के संस्करणों में इस परिभाषा को बदलकर दक्षिणी महासागर का अस्तित्व समाप्त कर अटलांटिक प्रशांत एवं हिंद तीनों महासागरों की दक्षिणी सीमा अंटार्कटिका महाद्वीप तक बढ़ा दी गई। सीमांत सागर। हिंद महासागर की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि यह उत्तर के महाद्वीपीय भूखंड में बहुत अंदर तक प्रविष्ट हो गया है। अरब सागर का उत्तरवर्तीय विस्तार अरब तथा उत्तरी पूर्वी अफ्रीका के मध्य अदन व लाल सागर द्वारा तथा अरब व ईरान के बीच ओमान व फारस की खाड़ी द्वारा प्रकट होता है। हिंद महासागर से संबंधित इन सीमांत सागरों के अतिरिक्त मलक्का एवं सिंगापुर जलडमरू मध्य अंडमान सागर बंगाल की खाड़ी एवं लक्षद्वीप सागर भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। सिंगापुर जलडमरू मध्य को कभी कभी प्रशांत में भी सम्मिलित करते हैं। दो अन्य उप सीमांत सागर मोजाम्बिक चैनल एवं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट भी इसके अंतर्गत आते हैं। अंडमान सागर, स्थिति 5 डिग्री से 17 डिग्री उत्तर, 92 डिग्री से 98 डिग्री पूर्व, लंबाई 1200 किलोमीटर, चौड़ाई 650 किलोमीटर, क्षेत्रफल 798,000 किलोमीटर स्क्वायर, औसत गहराई 870 मीटर, अधिकतम गहराई 4,180 मीटर, परिमाण 694,000 किलोमीटर। कुसिन्ना के पश्चात 1921, अंडमान सागर 798,000 किलो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले भू आकृतिक बेसिन में फैला है। इसमें अंडमान बेसिन बर्मा के इरावदी डेल्टा से दक्षिण में उत्तरी सुमात्रा एवं संलग्न मलक्का जलडमरू मध्य तक 1200 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई पूर्व में मलय प्रायद्वीप से लेकर पश्चिम में अंडमान निकोबार श्रेणी तक 650 किलोमीटर है। अंडमान सागर एवं बंगाल की खाड़ी का जल कई जलधाराओं से होकर बहता है। उत्तर से दक्षिण बहने वाली ये जलधाराएं हैं प्रीपेरिस चैनल, जो प्रीपेरिस द्वीप द्वारा अलग होती है तथा 200 मीटर से अधिक गहरी है। दूसरा 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीपों के मध्य स्थित एवं लगभग 800 मीटर गहरी है। तथा तीसरा ग्रेट चैनल, जो विशाल निकोबार एवं सुमात्रा के मध्य बहती है, 1800 मीटर गहरी है। बंगाल की खाड़ी भारत के एक प्रदेश के नाम पर आधारित, यह खाड़ी प्रायद्वीपीय भारत एवं बर्मा के मध्य स्थित हिंद महासागर की उत्तरी पूर्वी भुजा है। उत्तर में यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टाई प्रदेशों से सीमित है। इसके पूर्व में बर्मा का प्रायद्वीपीय भाग तथा दक्षिण में अंडमान एवं निकोबार श्रेणियां, जो कि अराकानयोमा के दक्षिणवर्ती विस्तार हैं, स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो के विशेष प्रकाशन संख्या 23 1953 के अनुसार इसकी दक्षिणी सीमा पश्चिम में श्रीलंका के दक्षिणी छोर पर स्थित डोंड्रास हेड से लेकर पूर्व में सुमात्रा के उत्तरी सिरे तक फैली है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व समुद्री तट तक सकरे जलडमरू मध्यों एवं जलमार्गों द्वारा कटे फटे तटों व द्वीप श्रृंखलाओं के रूप में दृष्टिगोचर होता है। ये जलडमरू मध्य व जलमार्ग लगभग सर्वत्र समान रूप से छिछले हैं। इनकी औसत गहराई केवल कुछ स्थानों को छोड़कर, जहां अधिकतम गहराई 463 मीटर तक पाई जाती है, 36 मीटर है। पृष्ठीय वायु छिछले सागर की समीपवर्ती महासागर के धारा संचार की अपेक्षा बड़ी तीव्रता से प्रवाहित करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बर्मा की मरगुई द्वीप श्रृंखला तथा सुमात्रा द्वीपों से घिरा हुआ इरावदी के डेल्टा से गंगा की भांति प्रतिवर्ष करोड़ों टन अवसाद बंगाल की खाड़ी में जमा होता है। प्राच्यतिहासिक काल में भारत से बंगाल की खाड़ी द्वारा बर्मा, कंबोडिया, चंपा व इंडोनेशिया को भारी संख्या में प्रवास हुए। संभवतः भारतीय प्रायद्वीप की मध्यवर्ती स्थिति ने उस समय के प्रभावी व्यापारिक कार्यकलाप को बंगाल की खाड़ी तक सीमित रखा। अरब सागर। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो के अनुसार अरब सागर की भौगोलिक सीमा दक्षिण पश्चिम में रास हाफून सोमालिया से अद्दू प्रवाल वलय तक खींची गई सीधी रेखा द्वारा निर्मित है। वहां से यह रेखा मालदीव एवं लक्षद्वीप के पश्चिमी छोर को मिलाते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सदाशिवगढ़ लाइट तक चली गई है। अदनखाड़ी, गुआ डाफुई के देशांतर रास असीर 51 डिग्री 15 मिनट पूर्व द्वारा तथा ओमान खाड़ी स्थित रास लीमा 25 डिग्री 57 मिनट उत्तर से ईरान के रास अल कुह 25 डिग्री 48 मिनट उत्तर को मिलाकर खींची गई रेखा द्वारा अरब सागर से अलग होती है। समुद्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्कॉट 1955 द्वारा अरब सागर को निम्न सीमाओं से आबद्ध माना गया है। दक्षिणी सीमा गोवा के समीप के भारतीय तट से लक्षद्वीप के पश्चिम होते हुए भूमध्य रेखा तक जाती है, जहां से यह थोड़ा दक्षिण मुड़कर पूर्वी अफ्रीका के तट पर स्थित मुम्बासा के समीप 5 डिग्री दक्षिण तक पहुंच जाती है। अदन एवं ओमान की खाड़ियों को छोड़कर इसका क्षेत्रफल लगभग 7,45,06,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत अरब बेसिन का 95% तथा सोमाली बेसिन का उत्तरी 2/3 एवं सबसे गहरा भाग आता है। लक्षद्वीप एवं श्रीलंका के बीच का क्षेत्र, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो ने लक्षद्वीप सागर का नाम दिया है, जल राशि के आधार पर अरब सागर में सम्मिलित नहीं किया जाता है। बहुत प्राचीन काल से ही अरब नाविक अरब सागर व इसकी खाड़ियों को यात्रा व व्यापार हेतु प्रयोग करते थे, जबकि मिस्र निवासी लाल सागर व इसके दक्षिण स्थित हिंद महासागर का अधिक प्रयोग करते थे। अरब, मिस्र, ग्रीक व रोमन साहित्य की कथाओं में हिंद महासागर के द्वीपों का वर्णन अत्यंत समृद्ध भूमि के रूप में आता है। कटियावाड़ प्रायद्वीप पर लोथल के भग्नावशेष सर्वाधिक प्राचीन पत्तन की उपस्थिति का संकेत करते हैं, जहां से प्रोटो इंडियन सभ्यता के प्रतिनिधि अरब सागर की ओर जाया करते थे। फारस की खाड़ी। हिंद महासागर की इस भुजा का कुल क्षेत्रफल 2,39,000 वर्ग किलोमीटर एवं परिमाण 6,000 घन किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1,025 किलोमीटर, अधिकतम चौड़ाई 350 किलोमीटर तथा न्यूनतम चौड़ाई 58 किलोमीटर है। गहराई प्रायः 50 फैदम के आसपास ही पाई जाती है, कहीं कहीं यह 93 फैदम भी मापी गई है। खाड़ी के प्रवेश द्वार के समीप गहराई 60 फैदम से अधिक है। फारस की खाड़ी के तट व द्वीप प्राचैतिहासिक काल से ही हिंद महासागर से आने तथा जाने वाले व्यापारिक मालवाही पोतों द्वारा सागर तट के निवासियों की समृद्धि व शरण स्थल का कार्य करते आ रहे हैं। फारस की खाड़ी का अरब व ईरानी तट मरुस्थली, पथरीला व बलुआ है। यहाँ बहुत सी मूंगे की चट्टानें हैं जो जल यात्रा में बाधक होती हैं। हार्मूज द्वीप 13वीं सदी से ही पुर्तगालियों के अधीन था। लाल सागर। लाल सागर दक्षिण में बाब एल मैंडेब के सकरे जलडमरू मध्य से उत्तर पश्चिम में 1932 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यह अफ्रीका महाद्वीप को अरब प्रायद्वीप से एक सकरे समुद्री मार्ग से, जिसकी दक्षिण में सर्वाधिक चौड़ाई मात्र 306 किलोमीटर है अलग करता है। लाल सागर का रंग लाल कॉनफर्वा अत्यंत छोटे समुद्री जीव की बहुलता तथा समीपवर्ती लाल पर्वतों के कारण है। इलेट के समीप भूमध्य सागर इससे केवल 128 किलोमीटर रह जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस भूसंचलन ने हिमालय जैसे नवीन पर्वतों को जन्म दिया उसी से भूपटल पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ी। लाल सागर भी उन्हीं में से एक है। इसके दोनों ओर के कगार कटे फटे तथा दक्षिण में इनकी ऊंचाई 2500 मीटर तक पहुंच जाती है। स्वेज नहर ने लाल सागर को आधुनिक राजनैतिक महत्व प्रदान किया है। द्वीप, द्वीप समूह एवं द्वीप श्रृंखलाएं हिंद महासागर के चमकते हुए लहराते जल में यत्र तत्र बिखरे द्वीप आसमानी चादर में टके हुए सितारों की तरह प्रतीत होते हैं। अरब भूगोलविदों के अनुसार इनकी संख्या 1370 थी। उनके इस अनुमान का आधार तो ज्ञात नहीं है, पर वास्तविकता इससे 5 गुना अधिक की लगती है। श्रीलंका व मेडागास्कर हिंद महासागर के दो बड़े द्वीप हैं। श्रीलंका भारत से सकरे पाक जलडमरू मध्य द्वारा व मेडागास्कर जो कि संसार का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और अफ्रीका व पूर्व को जोड़ने के लिए विशाल सीढ़ी का काम करता है, मोजाम्बिक जलमार्ग द्वारा अफ्रीका से पृथक है। पूर्वी हिंद महासागर में बर्मा के पश्चिम बर्मा की मरगुई द्वीप श्रृंखला, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुमात्रा के पश्चिम की मंतावी द्वीप श्रृंखला तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में कॉकस, किलिंग व क्रिसमस द्वीप महत्वपूर्ण हैं। पश्चिमी हिंद महासागर में फारस की खाड़ी के द्वीप, लक्षद्वीप, अमीन द्वीप, मालद्वीप व चागोस द्वीप श्रृंखला, सोकोत्रा, पेम्बा व उंगुजा, जंजीबार, सेसेल्स, मॉरिशस, रियूनियन व रोड्रीगेस महत्वपूर्ण हैं। 40 दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण दक्षिण अफ्रीका के प्रिंस एडवर्ड और मैरियन, फ्रांस के क्रोजेट, कर्ग्यूलेन व एम्स्टर्डम तथा सेंट पॉल और ऑस्ट्रेलिया के हर्ड व मैक डोनाल्ड द्वीप स्थित हैं। दक्षिण में हिंद महासागर पछुआ हवाओं तथा गरस्ता चालीसा रोरिंग फोर्टीज के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। इसके और दक्षिण दक्षिणी महासागर की बर्फीली हवाएं व अंटार्कटिका हिमखंड स्थित हैं। हिंद महासागर की विशेषताएं एवं सामुद्रिक महत्व। विशेषताएं: अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अन्वेषण यात्रा 1962 से 65 के पश्चात 1971 में विर्की ने हिंद महासागर के भौतिक एवं रासायनिक स्वरूपों के विवरण का एक मानचित्र बनाया है। इसके अनुसार विभिन्न विशेषताएं निम्न हैं। भौतिक विशेषताएं: हिंद महासागर का उपांतीय महासागरों को सम्मिलित कर कुल क्षेत्रफल 74.92 × 10⁶ किलो वर्ग किलोमीटर तथा औसत गहराई 3873 मीटर आती है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसके अंतर्गत विश्व के कुल सागरों का 20.8% क्षेत्र आता है। हिंद महासागर का समोच्च रेखीय मानचित्र एशियाई महाद्वीप के कारण भूमध्य रेखा के संदर्भ में असममित आकार का है। इस असममिति के कारण हिंद महासागर उत्तरी गोलार्ध के गहन ऊर्ध्वाधर संवहन क्षेत्रों से भिन्न है। आधुनिक भूभौतिक अनुसंधानों से प्रकट है कि जहाँ तक इसके निर्माण के इतिहास एवं भू आकृति का संबंध है, अपने असममित निर्माण के कारण यह तीनों बड़े महासागरों में सबसे जटिल है। इसके चुंबकीय क्षेत्र के माप से ज्ञात होता है कि इस महासागर का नीतल 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से विस्तृत हो रहा है तथा यह लगभग 10^8 वर्ष प्राचीन है। हिंद महासागर की अत्यंत प्रमुख स्थलाकृतियों में भूकंप सक्रिय उल्टे वाई के आकार का मध्य हिंद महासागरीय कटक है, जो कई उत्तर उत्तर पूर्व की उपनदी के दरारी क्षेत्रों द्वारा काट दिया गया है। लघु महाद्वीप एवं देशांतरीय अभूकंपी कटक जैसे 4000 किलोमीटर लंबा 10 डिग्री पूर्वी कटक एवं चागोस लक्षद्वीप पठार हिंद महासागर की विशिष्ट आकृतियां हैं। ये आकृतियां यद्यपि स्थूल हैं, मध्य हिंद महासागरीय कटक के असम स्वरूप के विपरीत अपेक्षाकृत समतल धरातल के खंड हैं। अन्य महासागरों की भांति यहाँ स्थलाकृतिक दृष्टि से ऊंचे क्षेत्रों के मध्य कई गहरे बेसिन हैं। अवसाद निर्मित शंकु तथा 1.5 से 2.5 किलोमीटर की मोटाई के पाताली मैदान बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, शोमाली बेसिन तथा मोजाम्बिक बेसिन में पाए जाते हैं। गंगा शंकु के कुछ भागों में अवसादों की मोटाई 12 किलोमीटर से अधिक है। ऊंचे दक्षिणी अक्षांशों में ध्रुवी अग्रांत के समीप अंटार्कटिक सागर की अत्यधिक उत्पादकता के कारण समतल एवं मध्यम अवसादीय मोटाई की स्वेल भू आकृति पाई जाती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में विशेषकर भू आकृतिक दृष्टि से ऊंचे क्षेत्रों में अवसाद की पतली परत पाई जाती है। जटिल भू आकृतिक तटवर्ती महाद्वीपों का असम वितरण भूगर्भ एवं जलवायु की भिन्नताएं तथा हिंद महासागर के उत्तरी भाग की भूभागों से घिरे होने से उत्तरी अक्षांशों के शीतल प्रभाव की बाधा का हिंद महासागर के उत्तरी भाग में जीव एवं औषधीय विशेषताओं पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर इसमें गिरने वाली नदियों से प्रति वर्ष 34×10^8 टन निलंबित अवसाद प्राप्त करता है। इसका लगभग आधा 16×10^8 टन भारतीय उपमहाद्वीप की नदियों से उपलब्ध हो जाता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से हिंद महासागर में कैल्केरियस अवसाद का सर्वाधिक विस्तृत परतदार जमाव हुआ है। यह मध्य हिंद महासागरी कटक पर फैला है। अन्य अधिक छिछले क्षेत्र न तो अधिक टेरिजीनियस प्रकृति के हैं, न ही पतली परत के सिलिका युक्त अवशेषों के। जिस विशेष गहराई पर कैल्शियम कार्बोनेट नगण्य घटक हो जाता है, वह अक्षांशों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। अन्य परतदार जमाव ये हैं: प्रमुख नदीन बेसिनों से संलग्न टेरिजीनियस क्ले, उच्च जैविक उत्पादकता के प्रभाव से भूमध्य रेखीय एवं दक्षिणी अक्षांशों में सिलिका युक्त क्ले एवं उज उत्पादकता पेटी से बाहर गहरे क्षेत्रों में भूरी एवं लाल क्ले तथा टेरिजीनियस बहुल क्षेत्र। यद्यपि टेरिजीनियस अवसाद का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा है, अत्यधिक मोटाई के कारण कुल अवसाद का आयतन 70% से अधिक है। इनके अतिरिक्त हिंद महासागर के अन्य प्रमुख जमाव ये हैं। भू आकृति के दृष्टिकोण से ऊंचे क्षेत्रों में विशेषकर मध्य हिंद महासागरीय कटक पर स्थित कठोर चट्टाने ज्वालामुखी एवं चूने के पत्थर की। दूसरा, टेरिजीनियस अवसादों से दूर गहरे बेसिनों एवं अगुलहास पठार पर मैग्नीस पिंड। तथा तीसरा, इंडोनेशियाई द्वीप श्रृंखला से संलग्न पूर्वी हिंद महासागर में सिलिका युक्त ज्वालामुखी राख। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर के तटवर्तीय कई देशों के तटवर्तीय प्रदेशों जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा श्रीलंका में इल्मेनाइट प्लेसर के निक्षेप पाए जाते हैं। सागरीय विशेषताएं। हिंद महासागर ऋणात्मक जल संतुलन का क्षेत्र है। इसे नदी निस्त्राव द्वारा 6000 घन किलोमीटर तथा वर्षा द्वारा 88000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है, जबकि इसके 103000 घन किलोमीटर जल का वाष्पीकरण होता है। हिंद महासागर के कुछ भाग ऐसे भी हैं जहां जल संतुलन धनात्मक भी है। इसके उत्तरी पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी 0 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर तथा 80 डिग्री से 100 डिग्री पूर्व, जिसका क्षेत्रफल 4.087×10^6 वर्ग किलोमीटर है, में नदी निस्त्राव की मात्रा 1730 की घन किलोमीटर तथा वर्षा 11000 घन किलोमीटर है। यह मान लिया जाए कि घुलनशीलता की सीमा 25 मीटर की गहराई तक है, तो यह मात्रा वर्षा एवं नदी निस्त्राव के जल की ऊपरी सतह के जल में 5% तक होगी। हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित अरब सागर 0 से 25 डिग्री उत्तर तथा 50 से 80 डिग्री पूर्व ऋणात्मक जल संतुलन का क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 6.225×10^6 वर्ग किलोमीटर है तथा यह 10000 घन किलोमीटर वार्षिक वर्षा तथा भारत एवं पाकिस्तान की नदियों के निस्त्राव से 525 घन किलोमीटर जल प्राप्त करता है। ये दोनों क्षेत्र हिंद महासागर के केवल 13.8% क्षेत्र पर विस्तृत है, पर ये कुल का 37.6% वार्षिक वर्षा एवं 23.9% नदी निस्त्राव जल प्राप्त करते हैं। वास्तव में तो बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर सम्मिलित रूप से विश्व के 5% सागरीय क्षेत्र पर विस्तृत हैं, पर विश्व के नदी निस्त्राव का 9% जल प्राप्त करते हैं। हिंद महासागर का एक विशिष्ट स्वरूप यह है कि उत्तरी प्रदेश में पृष्ठीय परिसंचरण सर्कुलेशन प्रत्येक 6 मास में उलटकर शीत ऋतु के मानसून में उत्तर पूर्व से तथा ग्रीष्म ऋतु के मानसून में दक्षिण पश्चिम से हो जाता है। इस तथ्य के आधार पर सागर वायुमंडल की अंतरक्रिया का अध्ययन किया जा सकता है। भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तर में एशिया महाद्वीप के कारण हिंद महासागर की आकृति असममित है। परिणाम स्वरूप यह महासागर उत्तरी गोलार्ध के गहन ऊर्ध्वाधर संवहन क्षेत्रों से भिन्न है। साथ ही यह 10 डिग्री दक्षिण तक विशिष्ट वायुमंडली परिसंचरण मानसून से प्रभावित रहता है। इस प्रकार के असममित विन्यास से तथा उत्तरी हिंद महासागर में दोनों मानसूनों के प्रतिलोमन से पृष्ठीय जल में परिसंचरण अत्यंत हल्का तथा गहराई में जल में परिवर्तन हो जाता है। हिंद महासागर में बड़े पैमाने की तीन स्पष्ट परिसंचरण प्रणाली पाई जाती है। पहला, 10 डिग्री दक्षिण के उत्तर मौसमी परिवर्तन वाला मानसून परिभ्रमण। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध का उपोष्ण कटिबंधीय प्रतिचक्रवाती परिभ्रमण तथा तीसरा, सरकमपोलर धारा का अंटार्कटिक जल। उत्तरी पूर्वी मानसून के समय भूमध्य रेखा के उत्तर महासागरीय परिसंचरण मध्यम तीव्र रहता है तथा पूर्व से पश्चिम बहता है। गहराई में ताप प्रवणता कम पाई जाती है। ताप प्रवणता में कम अंतर के कारण हिंद महासागर के उत्तरी पूर्वी भाग में जल संचरण का एक कमजोर क्षेत्र पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में उत्तरी पूर्वी मानसून पर्याप्त प्रबल होता है, जिसमें अधिक मात्रा का नदी निस्राव संभवतया उत्तरी पूर्वी प्रदेश के कमजोर जल संचरण की क्षतिपूर्ति कर देता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा प्रबल हो जाती है। इस जलधारा के बाद में पूर्वी अफ्रीका तटीय जलधारा का निर्माण हो जाता है। बाद में उत्तर की ओर बहकर सोमाली जलधारा के नाम से जानी जाती है। यह अक्सर पश्चिम की ओर बहने वाली जलधाराओं गल्फ स्ट्रीम या क्यूरोसियो के समान गति प्राप्त कर लेती है। मानसून जलधारा, दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा तथा सोमाली जलधाराएं मिलकर भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में प्रबल वायु निर्मित भंवर बनाती हैं। परिणाम स्वरूप सोमाली तट पर 5 से 11 डिग्री उत्तर के मध्य अत्यंत गहन जल संचरण होता है। इससे ऊपरी सतह के गर्म जल के स्थान पर उपसतही जल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान का जल ऊपर आ जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय अरब तट के समानांतर 59 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व प्रबल हवाएं बहती हैं तथा जल संचरण उत्पन्न कर देती हैं। यह जल संचरण सोमाली जल संचरण से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें शक्तिशाली धाराएं विकसित नहीं होती। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में भारत के पूर्वी तट पर एक शक्तिशाली जल संचरण का पता चला है। भारत के पश्चिमी तट पर उपसतही जल ऊपरी सतह के अत्यंत समीप आ जाता है। यह संचरित अपवेलिंग जल का क्षेत्र माना जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय प्रतिचक्रवातीय परिभ्रमण के अंतर्गत दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, अगुलहास जलधारा तथा 40 डिग्री दक्षिण के समीप उपोष्ण कटिबंधीय अभिबिंदु के उत्तर पश्चिमवर्ती प्रवाह के भाग भी आते हैं। अंटार्कटिक जल प्रमुख ताप प्रवणता में कमी आने से तथा उत्तर को बहने वाली हिंद महासागर के डीप एवं बॉटम वाटर के अधिकांश भाग के निर्माण में सहायक गहराई तक पहुंचने वाली शक्तिशाली सरकमपोलर धाराओं द्वारा नियंत्रित होता है। हिंद महासागर की उत्तरी सीमा स्थल से घिरी है, अतः यह फारस की खाड़ी एवं लाल सागर से अधिक लवणता युक्त जल प्राप्त करता है। फारस की खाड़ी का जल हार्मूज जल डमरू मध्य होकर बहता है, जबकि लाल सागर का बाब एल मैंडेब जल डमरू मध्य होकर। उत्तर में उद्भव होने वाले हिंद महासागर के केवल ये दो जलपुंज राशि हैं। फारस की खाड़ी एवं लाल सागर जलपुंजों की उपस्थिति अरब सागर में भूमध्य रेखा तक तथा बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी भाग तक पाया गया है। फारस की खाड़ी का जल अरब सागर में 100 से 300 मीटर की गहराई पर पहचाना जा सकता है। इसे हिंद महासागर के भूमध्य रेखीय भाग में 500 की गहराई पर 26.5 के ओट पर पाया जा सकता है। 27.1 पर ओट की विशेषता का लाल सागर का जल अरब सागर में 400 से 900 मीटर की गहराई पर तथा भूमध्य रेखी हिंद महासागर में लगभग 1000 मीटर की गहराई पर पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उत्तरी हिंद महासागर में दो अन्य पृष्ठीय जलपुंजों का निर्माण होता है। इसमें से एक उत्तरी एवं मध्यवर्ती हिंद महासागर में उच्च लवणता का पृष्ठीय जल, जिसका निर्माण अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण होता है, 25 डिग्री पर का यह जलपुंज 125 मीटर की गहराई तक पाया जा सकता है। दूसरा, अत्यधिक वर्षा एवं नदी निस्त्राव की मात्रा के कारण निम्न लवणता का पृष्ठीय जल बंगाल की खाड़ी में बनता है। यह जल पुंज श्रीलंका के दक्षिण से लेकर पश्चिम तक बहता है तथा अरब सागर में काफी दूरी तक पाया जा सकता है। 100 से 300 मीटर की गहराई पर उपलब्ध तथा 27.6 के जल पुंज के उत्तरी हिंद महासागरीय डोप वाटर कहते हैं। 3000 मीटर से नीचे के जलपुंज को उत्तरी हिंद महासागरीय बॉटम वाटर कहते हैं। ये दोनों जलपुंज उत्तर को बहने वाले निम्न तापमान एवं निम्न लवणता के अंटार्कटिक द्वीप एवं सरकम पोलर तथा जलपुंजों के मिश्रण से बनते हैं। कई विद्वानों के अनुसार 1000 मीटर से नीचे बहने वाले उत्तरी हिंद महासागर के जल पुंजों का उद्भव अंटार्कटिक सरकम पोलर प्रदेश में होता है तथा वे उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करते हैं। ये जल पुंज उत्तर में प्रवेश कर मध्यवर्ती एवं पूर्वी बेसिनों में फैल जाते हैं तथा अपने विशिष्ट मान से पहचाने जा सकते हैं। इन जलपुंजों के अतिरिक्त कई अन्य गौण जलपुंज भी हैं जो मिश्रण से बनते हैं। रासायनिक विशेषताएं। हिंद महासागर के विभिन्न जलपुंजों की पोषक विशेषताएं उत्तरी हिंद महासागर में बहने वाली मानसून हवाओं द्वारा नियंत्रित होता है। इसकी सामान्य विशेषताएं निम्न हैं: कमजोर जल संचरण तथा बाधित परिसंचरण के कारण पूरे उत्तरी हिंद महासागर में लगभग सर्वत्र 100 से 1000 मीटर तक अत्यंत कम ऑक्सीजन के केंद्रीयकरण की एक मोटी परत पाई जाती है। इस जल में ऑक्सीजन की मात्रा अक्सर 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर से कम रहती है। भारत के अपतटीय क्षेत्र में अक्सर इससे कम मान पाया गया है। हिंद महासागर की यह विशेषता पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के समान है। उत्तरी हिंद महासागर का मानसून परिभ्रमण उच्च तत्वों की विशेषता, जो कि जल संचरण के प्रभाव के कारण निम्न ऑक्सीजन के केंद्रीकरण से संबंधित है, से युक्त है। यहां इसके केंद्रीकरण का मान अधिक पाया जाता है। सोमाली जल संचरण के प्रदेश में फास्फेट केंद्रीकरण का मान अधिक होता है। दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में यह अधिक पाया जाता है। 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पोषकों के केंद्रीकरण में पर्याप्त परिवर्तन पाया जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय परिभ्रमण के क्षेत्र में पोषकों का मान बहुत कम होता है। सामान्यतया केंद्रीकरण की गहराई के साथ बढ़ता है तथा 300 से 400 मीटर की गहराई को संपूर्ण जल को इस परत में सर्वाधिक पाया जाता है। नीतल के समीप इसमें कुछ कमी आ जाती है।